أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. فقال تعالى في مقام آخر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پچھلے دنوں ایک سوال آیا تھا، ایک مفتی صاحب سے پوچھا تھا کسی نے کہ بٹ کھانا کیسا ہے، اوجڑی بٹ. آج کل نوجوان کہتے ہیں میں سب کام کر سکتا ہوں بٹ بٹ کھاتا نہیں ہوں. یہاں بٹ کا مطلب لیکن ہوتا ہے. سو بٹ جس کو اوجڑی کہتے ہیں، اس کو صاف کر کے اگر پکایا جائے تو اس کا کھانا بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے جس کو ہٹا دیا جاتا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر غلاظت ہوتی ہے تو اس کو کھانا صحیح نہیں ہے. غلاظت اس جھلی کے اوپر ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنائی ہے. تو اس کو اگر جھلی کو ہٹا دیا جائے اور صاف کیا جائے اچھی طرح، عام طور پہ ہماری پرانی عورتیں بناتی تھیں صاف کر کے، تو مزیدار بھی ہوتی ہیں اور کھانا بالکل جائز ہے. کسی کو طبیعت کراہت کرتی ہے نہ کھائے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. گوہ جو ہے وہ صحابہ وعدے کھاتے تھے، عرب میں ہوتا ہے گوہ، سانپ کہتے ہیں، حالانکہ سانپ نہیں ہوتا، عجیب سا جانور ہوتا ہے. تو احساس صحابہ کھاتے تھے، دسترخوان پہ موجود تھا، آپ علیہ السلام نے تناول نہیں فرمایا، پھر بھی منع بھی نہیں کیا کھانے والوں کو، میں نہیں کھاتا ہوں تم کیوں کھاتے ہو. تو پتہ چلا کہ بعض چیزیں طبیعت میں کراہت کرتی ہیں تو وہ نہ کھائے، دوسرا کھا رہا ہے تو اس کو کھانے دے. تو اوجڑی بٹ اس کا حکم یہ ہے کہ جائز ہے. جو سات چیزیں منع کی جاتی ہیں اس میں کپورے وغیرہ ہیں جس کو نہیں کھانا چاہیے، اور دوسرے جھینگا، جھینگا کو لوگ مچھلی کہتے ہیں اور عرف میں کہتے بھی ہیں، بنگلہ دیشی حضرات کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی ہے. مفتی عبدالسلام چاٹگامی رحم اللہ تعالی اس کو بالکل حلال اور صحیح کہتے تھے، اور مولانا دھانی صاحب اس زمانے میں اس کو مکروہ تحریمی کہتے تھے. پھر بعد میں بہت تحقیقات ہوئی اس پر، میڈیکلی اعتبار سے، سائنٹیفک اعتبار سے، اور علماء کے قول کے اعتبار سے. حاصل کلام یہ ہے، شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کی بات، ہمیں باریکی میں جانے کہ ہم اہل بھی نہیں ہیں کہ ہم ان باریکیوں میں جائیں. ایک بڑا مفتی جو کہہ دے بس، فرمایا کہ بھئی کراہت نظر آتی ہے تنزیہی، ایک تحریمی ہوتی ہے. تحریمی کا مطلب حرام کے قریب، جیسے داڑھی منڈانا اور کٹانا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے، صرف مکروہ نہیں ہے. جیسے سگریٹ مکروہ ہے، یہ تنزیہی ہے اور حرام کے قریب نہیں ہے، لیکن اور نشہ چرس وغیرہ جو مدہوش کر دے یہ مکروہ تحریمی یا حرام ہے، شراب جیسے حرام ہے. کل مسکرن حرام، جو چیز نشے میں مدہوش کر دے وہ حرام ہے، مدہوش کر دے وہ حرام ہے. تو جھینگا جو ہے وہ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے قول کے مطابق، کیونکہ حضرت جب بنگلہ دیش گئے تو وہاں کے بڑے علماء نے کہا کہ آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں، ہم کھاتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہم سے پوچھے بڑے عالم نے وہاں کے کہا، کیونکہ وہ اسی کلیبر کے آدمی ہوں گے. انہوں نے مفتی صاحب آپ کرتا دے رہے ہیں مکروہ تحریمی کا، ہمیں پتا ہے کہ یہ مچھلی ہے اور اس کو شروع سے مچھلی کہا جاتا ہے، لہذا اس کا کھانا ان کے نزدیک بلا کراہت. پھر مفتی تقی صاحب نے اس میں کہا بھی جو کھاتا ہے آپ اس پہ نکیر نہ کریں، اور جو نہیں کھاتا وہ احتیاط کرے تو اچھا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے بے شمار चीजें हैं खाने की, एक ही में कराहत है उसी के पीछे पड़ना जरूरी है? और चीजें खा लो, मछली की कितनी किस्में, कुंद ये हमारे साथी लाते हैं, कुंद, कुंद जहन नहीं है, कुंद उसका नाम है, कुक्कड़ मछली, मुर्गा, बफल, कितनी कितनी मछलियां हैं, पाम्पलेट तो देख सकता है आदमी, खरीदना मुश्किल है असली वाला, तो कितनी मछलियों की किस्में। झींगा ही जरूरी है, कहते हैं बहुत अच्छी लगती है झींगा बिरयानी, कोई खा रहा है तो उसको खाने दें, लेकिन हम ना हम खाते हैं ना हमारे हजरत वाला खाते थे। मौलाना मदर साहब दामर का तुम इस बात को बार बार फरमाते थे कि बांग्लादेश के दस्तरखान पर हजरत मौलाना मदर साहब मौजूद थे, और हाजी कमाल साहब ये सब इंतकाल कर गए, हाजी कमाल और हाजी दिलावर ये हजरत वाला के पुराने मुरीदीन थे उस शाक, तो ये बात छिड़ी कि झींगा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो हाजी कमाल साहब ने मौलाना मदर साहब से पूछा कि हजरत वाला खाते थे या नहीं खाते थे आप बताएं। हजरत मौलाना मदर साहब ने हजरत वाला नहीं खाते थे कभी, कहा मैं भी नहीं खाऊंगा, बस शेख नहीं खाता तो मुरीद भी नहीं खाएगा, क्योंकि नहीं खाने से कोई नुकसान अजीम तो नहीं होगा ना, अगर दिल भी चाहता है थोड़ा सा दिल को मार लेंगे, अपने बड़ों के तरीके पे कायम रहना ज्यादा अच्छा है। और मिजान हमारे उस्ताद ने फरमाया था कि इसका मदार इस पर है कि वो बना हुआ कैसा है, अगर बनी हुई अच्छी है मछली तो खा सकते हैं, ये मजा है कि कैसी बनी हुई है। तो ऐसी चीजों में सख्ती नहीं करनी चाहिए, बादों के मिजाज में सख्ती होती है, बहुत से कराहत की चीजों को बाद में मुबाह करार दे दिया गया, जिसको इल्म दीन नहीं हो समझते नहीं हो समझते हैं जो ये मकरू को हलाल कहता है, ये मस्जिद में नमाज पढ़ना ये मकरू है, ईद की नमाज फुकहा ने लिखा है, हम पढ़ते हमारे हजरत भी पढ़ते थे, जरूरत बन गई बात, अब इतनी मैदान नहीं है, अब मैदान नहीं है, मैदान में फिर मैदान में सेटिंग कितनी मुश्किल है, यहाँ सारी चीजें लगी हुई हैं, मैदान में 3 दिन लगेंगे तैयारी करने। हमारे जामा मस्जिद की ईदगाह में बाहर होती थी नमाज, लाइनें डल रही हैं, इतने काम चल रहे हैं, उस दिन जल्दी लोग फजर पढ़ के गायब हो जाते थे, कोई काम करने वाले ही नहीं मिल, काम करने वाले नहीं रहते, दस्तरखान बिछ जाए तो हर आदमी आता है सलाम करता है ताकि बुला लें हो सकता है, और वरना चुपके से चले जाते थे कि आज तो एक दिन बाकी है, चांद चांद नजर आने वाला है, तो चांद रात को जो दिन पहले आखिरी रोजे में लकीरें खींचती थी। तो मुशक्कत का काम है, अब जायज करार दे दिया उलेमा ने, जायज करार दे दिया। इसी तरह मस्जिद में नमाज जनाजा भी मकरूह है लिखा है फुकहा ने, लेकिन कहीं अगर बिल्कुल जगह नहीं है वहां भी जवाज है, और अच्छा ये है जैसे हमने इसमें बिल्कुल कराहत भी खत्म हो जाती कि दो चंद आदमी बाहर हो, एक सफ से बड़ा 3 आदमी भी बाहर हो और जनाजा बाहर हो बाकी लोग अंदर हो, तो जनाजा बाहर है अब पढ़ना अंदर वालों के लिए भी कराहत नहीं है। इसलिए इल्म की इल्म का ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता कि मुझे सारी सारा इल्म मेरे पास बशमूल फी जमाना और पिछले जमाने के शुयूखुल इस्लाम के, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। दूसरे को हो सकता है उससे भी ज्यादा कोई ऐसा इल्म हो जो उसके पास ना हो सकता, जरूरी, तो इसलिए कोई कहता भी नहीं है, जो उलमा है वो कहते हैं भाई हमारा इल्म महदूद है, हमने तो चंद हर्फ पढ़े। मौलाना नानुतवी जैसा आदमी कह रहा है जिनकी किताब को हमारे हजरत फरमाते हैं मौलाना अब्दुल नतीन साहब, मैंने पढ़ने की कोशिश की तो पढ़ नहीं सका, सर में दर्द हो गया, बहुत मुश्किल से सर का दर्द सही हुआ, इतनी मुश्किल किताब। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं मुझे भी समझ में नहीं आया, इतना बड़ा आलिम जिसकी किताबें उलमा को समझ में नहीं आ रही, वो कहते इल्म के 2 हरफ अल्लाह ताला ने मुझे दे दिए तो कासिम को लोग जानते हैं, वरना कासिम कहां पैदा हुआ कहां मर गया लोग जानते भी नहीं। तो जो जितना इल्म रखता है उसके अंदर तवाजो आती, जो इल्म के बावजूद तवाजो ना हो और अपने आप को बड़ा बड़ा समझे तो वो कुल्लु मन असल्लाह फहुवा जाहिल, जो अल्लाह की नाफरमानी करे ये भी अपने आप को बड़ा समझना नाफरमानी नहीं, जो अल्लाह की नाफरमानी करे वो आलिम नहीं है जाहिल है, आलिम नहीं है बल्कि जाहिल है। तो इसलिए अहले इल्म से पूछना चाहिए, सिर्फ अपने इल्म के मुताबिक मैंने ऐसा सुना है बस, ये आजकल की जरूरत है, ये जो नक्शे बने हुए आप देखें, ये सामने भी नक्शो निगार बनाना पसंदीदा नहीं है, हजरत नहीं बनाते थे, अब सामने नक्शो निगार हैं बड़े, W11 बनाए मस्जिद को बहुत सुन चमक दमक, अब नमाजी की निगाह वहां जाती, ये मकरू है। सादा होना चाहिए ताकि नजर जाए नहीं। इसी तरह जानमाज भी इसी चादर बिछाना क्या है, बिलावजह ये खर्चा नहीं होता, इसको धुलाई का खर्चा होता है, चादर लाने का खर्चा होता है। लेकिन सफेद और सादा चीज में नमाज पढ़ने से ख्याल इधर उधर नहीं भटकता। वरना अक्सर जो जान नमाज उसमें नक्शे बने होते हैं, जान नमाज में नक्शे बने होते हैं, उसमें बाद दफा जहन उलझ सकता है, उलझ सकता है, हमेशा नहीं उलझता। इसलिए कराहत का अंदेशा है उसमें। बच्चा आदमी सफेद होगा, सीधे सीधे खड़ा होगा, नमाज पढ़ेगा। इसीलिए दूर ना देखे, नजर नीचे रखे, सजदे की जगह पर बहुत से लोग यूं करके देख नमाज पढ़ते रहते। तो इल्म को अहले इल्म से हासिल करे, और जो नहीं आता है उसको पूछे, फौरन एतराज ना करने लगे, दूसरे को हमेशा अच्छा समझे कि अगर वो ऐसे जानामात पे पढ़ भी रहा है तो उसका ख्याल नहीं आता। मोजे पे बाजू के लिखा हुआ होता है, हजरत वाला ने फरमाया था कि ये मोजे पे लिखा हुआ होना ये मकरूह है, लेकिन मैंने अपने शेख को देखा मौलाना मुफ्ती साहब को, उन्होंने पहना हुआ था। अब क्या इन दोनों में तदबीक क्या है कि नहीं है तो पहन सकते हैं, और है अगर सादा मिल रहा है तो सादा ले लें। इसी तरह जानमाज में भी अब कम हो रहा है, क्योंकि हजरत वाला ने इसको इतना बयान किया, मैं देखता हूँ हजरत वाला की आवाज महदूद नहीं रही, सारी दुनिया में पहुंची, दाढ़ी पांचा ऊपर रखने की आवाज भी सारी दुनिया में पहुंची। और ये भी कि जानमाज सादा लो, सादा उस पे यानी बैतुल्लाह और मदीने शरीफ का गुंबद बना हुआ ना हो। अब वो आम आदमी को देखो मदीने शरीफ के गुंबद से मना कर रहे हैं, बैतुल्लाह से मना कर रहे हैं, क्यों भाई? इसलिए कि आदमी बाद में उस पर चढ़ के जाता है, इमाम जो उधर पर बैठता है इमाम को बिछा दे, बड़ा मुजयन अच्छा सा बना हुआ है, इमाम पलट के बैठता है दुआ के लिए, दर्स के लिए, कहा किस चीज पे बैठा, इतनी अजीम चीज पर वो बैठा है। बेअदबी का शुबा है ना, पसंदीदा नहीं है। सादा क्यों नहीं लेते, सादा लेने में क्या हरज है? अगर किसी के पास आ गया तो उसका ख्याल रखे कि उस पर चढ़े नहीं, अदब के खिलाफ है, बाकी गुनाह कबीरा नहीं है। क्योंकि फतवा इस पर है ये असली नहीं है, शबी है, शबी है, असली होगा तो उस पर चढ़ना ठीक नहीं होगा। लेकिन बाद दफा असली पे भी चढ़ते हैं काम करने वाले, क्योंकि उसकी सफाई करनी होती, सफाई करनी होती तो उस पर वो चढ़ते हैं, मजबूरी है। बहुत से मजबूरी में अहकाम बदल जाते हैं, बहुत से जमाने के इन्हितात की वजह से अहकाम बदल जाते हैं। तो इसलिए इल्म एक समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि बस मुझे जितना इल्म है इतना किसी के पास, मैं जो कह रहा हूं मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, हाल ही कह सकता है, कोई और नहीं कह सकता। सारे आलम पे हूं मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, ये तो शेर व शायरी है, शेर व शायरी की पकड़ नहीं होती, लेकिन हकीकी तौर पे कोई नहीं। हाल ही से बहुत बड़े आलिम थे शिबली, अल्लामा शिबली नौमानी, हाल ही का इल्म शिबली के मुकाबले कतरा है, लेकिन शिबली के शागिर्द थे अल्लामा नदवी। तो बाइश्ती देवर पढ़ें शुरू से आखिर तक, ये पता नहीं ये तबका जो बैठता ये भी नहीं पढ़ता, अफसोस, खरीदना ही मुश्किल है, कितनी महंगी है पता नहीं, कितने 50,000 रुपए की है, कितनी मोबाइल तो जेबों में 50,000 का मोबाइल है, 10-20 हजार तो कोई बड़ी बात ही नहीं। बाइश्ती देवर, मारिफुल हदीस, मारिफुल कुरान, ये चंद किताबें हमारे पास नहीं होती, बताइए। हदीस शरीफ की इतनी बेहतरीन शरह है मारिफुल हदीस कि आप सुनिए और सुनाइए घर में तो बेनमाजी भी नमाजी बन जाएगा। फजाइल आमाल, फजाइल सदकात ये भी घर में रखें, किताबें रखें। गालिब ने कहा था चंद तस्वीर बुतां, चंद हसीनों के खतूत, चंद तस्वीर बुतां, चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। जैसा आदमी मरेगा वैसे ही सामान निकलेगा ना, क्रिकेटर मरेगा तो बल्ला गेंद निकलेगा है? कोई और मरेगा उस लिहाज, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ताला ने पहला मिसरा तब्दील कर दिया अपने लिए, चंद औराक कुतुब, चंद बुजुर्गों के खतूत, जो हकीम उल उम्मत को लिखे, चंद औराक कुतुब, चंद बुजुर्गों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। हम क्या चाहते हैं, ये हमारी औलाद पड़ेगी बहिश्ती देवर। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 25 साल से ज्यादा हो रहे हैं मुझे मारिफुल कुरान और मालूम हदीस मेरे पास है, अभी तक वो पढ़ने के काबिल है, अभी और 50 साल वो चल सकती है, बाइंडिंग करा ले, बिल्कुल मोबाइल इतने साल चलता है, 2-3 साल में या तो गिर जाता है, पुराना हो जाता है, दिल भर जाता है। किताबें नस्लों तक चलती हैं। मुफ्ती तकी साहब के दादा की किताब भी मौजूद है, मौलाना यासीन साहब उनके दादा थे। यासीन शरीफ की शरह में मुफ्ती तकी साहब, मुफ्ती शफी साहब लिख रहे हैं कि ये आज यासीन की मैं तशरीह लिखना शुरू कर रहा हूं, और यानी ये अल्लाह की शान है कि आज ही मेरे वालिद मौलाना यासीन साहब का विसाल हो गया। उसमें लिखा है, नोट लिखा है अलग से कि मौलाना यासीन जो थे हजरत मुफ्ती शफी साहब के वालिद साहब थे, और हजरत थानवी रहमतुल्लाह ताला के पास जाते थे, मुफ्ती शफी साहब भी जाते थे और वो भी जाते थे। तो मौलाना यासीन साहब रहमतुल्लाह ताला का विसाल उसी दिन हुआ जिस दिन सूरह यासीन की शरह लिखी है, शुरू की थी मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ताला। सूरह यासीन पढ़ने पे भी जो इसको पढ़ ले, जिसको किसी जिस हाजत के लिए पढ़े अल्लाह ताला वो हाजत पूरी करेंगे। बाद में दुआ कर ले, या अल्लाह मेरी, मैंने यासीन पढ़ी है, मेरी ये हाजत पूरी कर दीजिए। बताइए इतनी आसान सी सूरत, ये जो हम गैर हाफिज हैं पढ़ते हैं 6-7 मिनट लगते हैं, हाफिज तो 4 मिनट में फारिग कर देगा। हाफिज लोग तेज पढ़ते हैं, वजह क्या है, उनको हरूफ पे पढ़ते पढ़ते आदमी वो शाहसवार बन जाता है ना, शाहसवार बन जाता है। जैसे पुराना ड्राइवर बहुत तेजी से चलाता है, उसको कटिंग वटिंग से बात, और नया ड्राइवर सोच समझ के कहां पता नहीं अचानक ब्रेक लगाना पड़े। तो हाफिज तो 4-5 मिनट में पढ़ सकता है, गैर हाफिज 7 मिनट बहुत आराम से पढ़ेगा, बिल्कुल सही तजवीद के साथ। बताइए कितना वक्त लगेगा फजर के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़ने, याद हो जाए तो इशराक में पढ़ने। नमाज की हालत में एक हर्फ पढ़ना, अब सूरह यासीन के अल्फाज गिने, अगर इसको आपको करना है अल्फाज कितने और हरूफ कितने, तो मालिमुल इरफान लीजिए 20 जिल्दों में, मेरे पास है 20 जिल्दों में मालिमुल इरफान, मौलाना सवाती, मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह ताला के भाई की वो तफसीर है, उनके भाई थे वो, 20 जिल्दों में। उसमें ये भी लिखा है कि इस सूरत में अल्फाज कितने हैं, हरूफ कितने हैं, उसमें भी लिखा, आपको गिनना नहीं पड़ेगा। तो आप उससे हरूफ देख लीजिए कि बिलफर्ज 15,000 हरूफ हैं। 15,000 हरूफ को आप खड़े होकर जब नमाज पढ़ रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करें, जरब तो नहीं करते ना आज के लोग, जरब करना जानते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या कितना होगा आप ये देखिए, कितनी नेकियां एक दिन में आदमी जो खड़े होके नमाज में एक हर्फ पढ़ेगा कुरान का, 100 नेकियां उसको मिलेंगी। बैठ के जो पढ़ेगा 50 नेकियां मिलेंगी। जो बगैर नमाज पढ़ेगा 10 नेकियां हर हर्फ पर उसको मिलेंगी। बताइए कितना कुछ हम कमा सकते हैं, कोई तवज्जो है। कल एक जगह बयान था, मुझे अफसोस भी होता है कि मैं बाद में बहुत ज्यादा खरी बात कह देता हूँ सामने सामने, मुझे खुद भी अफसोस होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने उनसे बाद में कहा कि भाई बात यह है कि मैं खैरखाही में ये बात कहता हूँ, खैरखाही में। आप ये ना समझिएगा कि हकीर, हकीर समझने वाला अल्लाह की निगाह में हकीर हो जाएगा। याद, ऊपर बैठने से किसी की मगफिरत नहीं होती, जन्नत नहीं मिलती, याद रख। वहां पता चलेगा कौन अल्लाह का प्यारा है, ऊपर बैठने थोड़ी होता है। तो मैं ये मेरा दर्द है। अब देखिए उनको पता था, मैंने ये उनको पता था कि आज जहां हम जा रहे हैं खाना तो है, क्योंकि वो हमारे साथी ने घर लिया है तो वहां पे उन्होंने दावत भी की थी और बयान भी था गुलिस्तान जौहर में। तो दीनी मजलिस है, अब देखिए दीनी मजलिस है, पता हो तो आदमी थोड़ा सा तो गेटअप सेटअप बना ले, टोपी पहन ले कम से कम, ठीक है। दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी थोड़ी बढ़ा सकता है, नकली दाढ़ी भी नहीं लगा सकता, दाढ़ी बढ़ा भी नहीं सकता, टोपी तो लगा सकता है। अल्लाह ताला ने मुझे मिसाल अता फरमाई कि जब आप शादी में कार्ड आता है तो उसमें लिखा होता है लबास अच्छा पहन के आए, 3-पीस होना चाहिए, अगर आप पैंट शर्ट नहीं पहनते तो कम से कम वेस्ट कोट अच्छा होना चाहिए, लिखा होता है कहीं। लेकिन हम आप खुद तैयार होके जाते हैं, कोई है ऑफिस से भी नहीं जाते लोग, हालांकि ऑफिस में कोई फर्नीचर कपड़ा पहन तो नहीं है, लेकिन पसीना है, आदमी थकावट होती है, घर आएंगे चाहे जल्दी छुट्टी लेके आए, तैयार होंगे 1-2 घंटा फ्रेश होंगे, शावर लेंगे, फिर जाके दोबारा तैयार होके फिर जाते हैं बिल्कुल टिप टॉप के साथ। किसी ने नहीं लिखा और कोई भी नहीं कहेगा आपको कि तुम किस हुलिये में आ गए हो, सिवाय बहुत ही क्लोज दोस्त हो, वरना आदमी कहेगा चलो बेचारा गरीब है या क्या है, इतना सोचेगा, कहेगा कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह के घर में या दीनी मजलिस में आते हुए ख्याल नहीं आता कि हम कहां जा रहे हैं, तो हमें तैयार होके जाना चाहिए। उसी लिहाज से आज मस्जिदों में आम हालत, बगैर टोपियों के नमाज पढ़नी, कराची में भी है, खासकर जो पढ़े लिखे इलाके उसमें ज्यादा है। ये लोग मीडिया देखते हैं ना बाहर, अरे वहां नमाज हो रही है, वहां नमाज हो रही है, बगैर टोपी गए, अब तो हो जाती है नमाज। मैं तो आगे बढ़ गया था, टोपी भी उतार दो, कुर्ता भी उतार दो, बनियान भी उतार दो, सिर्फ शलवार में नमाज हो जाएगी। कभी ऐसे भी तो आओ ना अल्लाह के बंदे, कभी ऐसे भी तो पढ़ो। फिर मैंने वहीं पे कहा, अर्ज किया कि दावत बताइए, दावत की है इन्होंने, सबको पता है, चौथी मंजिल चढ़ के आए, अब खाना खिलाएंगे ना, खाने में दाल हो, दाल भी पतली, जिसपे तौलबा इकराम बहस करते हैं कि इससे वजू जायज है या नहीं, इतनी पतली कि ना बू बदली है ना जायका बदला है, इससे तो वजू भी जायज है, इतनी पतली दाल हो और रोटी रख दें तंदूर की ठंडी, एक घंटा पहले मंगा के, खाना हो जाएगा ना। लेकिन बताइए आपका दिल क्या कहेगा, इसने बुला के हमारी बेइज्जती की, खाना खिला, इसको खाना कहते हैं, लेकिन खाने का इतलाक होगा या नहीं होगा, सब ओकला और मुफ्तियान दीन बैठ जाए, खाना तो है ही, लेकिन खाना कैसा है ये देखें। हर आदमी ये तवक्को यकीन से रखता है और वो भी जानता है कि जब मैं बुला रहा हूं तो मुझे अच्छा खाना खिलाना। तो दुनिया में हर चीज अच्छी होनी चाहिए और दीन में हर चीज बस चलाओ। शेर याद आया, चल चलाओ पे, अच्छा शेर है। मेरे हालात मुझसे कहते हैं, मेरे हालात मुझसे कहते हैं चल, कहीं और चल के रहते हैं, पाकिस्तान में दिल नहीं लगता, पाकिस्तान में स्कोप नहीं है ना, हालांकि ये हमारे बड़ों का पसंदीदा नहीं है, इसमें भी कराहत है, कराहत है। इसलिए हजरत वाला ने कशकोले मार्फत में लिखा है कि रिस्क के उसूल के लिए समंदर पार का सफर करने में कराहत है, सहाबा ने कभी नहीं किया। लेकिन वही बात है, मजबूरी जब ऐसी आ जाए कि कोई नहीं है, ना यहाँ काम लग रहा है, ना यहाँ कदर होती है, चाहते हैं लोग, जायज है, लेकिन दीन की पूरी हिफाजत हो। और हिफाजत ज्यादा आप नमाज पढ़ेंगे, वो भी बड़ी दूर जाएंगे जमात तलाश करने, लेकिन ऐसा माहौल मिलेगा जब चाहे आप फलाने की मजलिस में, जब चाहे कराची के इज्तिमा में, फलाने के इज्तिमा में, ऐसा होगा कुछ भी नहीं। बड़ी मुश्किल से कुछ जमात वाले मिल जाते हैं, बड़ी मुश्किल से। और जैसा माहौल होता है ना, जैसा देश वैसा भेस, वहां का तकवा भी फिर वैसा ही होता है। दाढ़ी है, पैंट शर्ट पहने हुए, हर काम चल रहा है, हर उल्टा काम चल रहा है। खवातीन के इस्लाम में खातून ने लिखा था, जब हम शुरू शुरू में वहीं से लिखा था, उसने इंग्लैंड से लिखती है वो, हम शुरू शुरू में जब आए तो हम बोर्ड देख के नजरें झुका लेते थे, लेकिन अब हम यूज टू हो गए, हमारी आदत हो गई देखने, नंगी तस्वीरें लगी हुई हैं, कोई शर्म हया नहीं आती। जब शुरू में हम आए तो एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे, नजर झुका लेते थे, लेकिन आदमी रहते रहते वैसे हो जाता। तो मीर साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे, कराची पाकिस्तान, कराची के और अमेरिका के खुलफा के हालात में भी फर्क है। बात वही, बाहर सर्दी है तो अंदर भी तो सर्दी होगी ना, आप सारे दरवाजे बंद कर लें, पंखा भी बंद कर लें, सर्दी फिर भी आएगी, बंद करने से सर्दी खत्म नहीं हो जाएगी, माहौल का असर आएगा अंदर। गर्मी है तो आप सारे पंखे चला लें, शदीद गर्मी, फिर भी गर्मी, पसीना पोंछ रहा है आदमी, गर्मी। तो इसलिए बेहतर यह है, एक शायर ने कहा था, मजा जब है यहीं रहकर फिजा बदलो गुलिस्तां की, मजा जब है यहीं रहकर फिजा बदलो गुलिस्तां की, वो फूरे गम से घबरा कर चमन छोड़ा नहीं जाता, वो फूरे गम से घबरा कर चमन छोड़ा नहीं जाता। और जिसको यकीन है कि अल्लाह रज़ाक है, तो रज़ाक सिर्फ कनाडा में है और ऐसे ममालिक में जहां के बहुत ज्यादा दिरहम में महंगा है, पाउंड महंगा है, रज़ाक यहां भी है, यहां खाने वाले यहां भी खा रहे हैं। फिर हुसूल जर की खातिर क्यों मैं सरगर्दां फिरूं, ये वही लोग हैं, सरगर्दां फिरूं, एक तो ये नौकरी लग गई चले गए, समझ में आता है, ऐसे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही चले गए। आपने पढ़ते रहोगे अखबारों में, 200 आदमी 150 आदमी डुबो दिए यूनान जाते हुए, ये गैर कानूनी रास्ते से जाते हैं, एक मुबहम सफर पे निकलते हैं कि कुछ वहां पे अच्छा अच्छी कमाई हो जाएगी, जिंदगी की बाजी हार देते हैं। एक दफा नहीं हुआ, कितनी दफा हुआ पूछिए ये लोग जो मीडिया से, हम तो इस्लाम अखबार में देखते हैं। फिर उन पर केस भी चलाया वहां के इदारों ने, क्या होता है, कहते डूब गए हम क्या करें, हालांकि जान के डुबोते हैं, पैसे ले लेते हैं, फिर कश्ती डुबो देते हैं कि ये जाके वहां पे हम इनको कुछ दे तो सकते नहीं, लिहाजा इनको खत्म कर दो। अब घर वाले यहाँ रो रहे हैं और वो वहां डूब गया, बताइए किस लिए गए थे, कमाने के लिए गए थे। तो बंदे ने अर्ज किया, पहला शेर भी सुन लीजिए। ओहो माशाल्लाह, आज तो बड़ी रौनक आ गई भाई। माशाल्लाह, वालेकुम सलाम, शुक्र है आपने अपने हयात का सबूत दे दिया, हम तो फातिहा पढ़ने वाले थे। माशाल्लाह, सगीर साहब हमारे जिंदा दिल आदमी है, कोई और किसी और बुढ़े को मौत के बारे में बोलो ना फौरन कड़कड़ करने लगेगा। ये तैयार रहते हैं जाने के लिए, जिसको दीन से ताल्लुक है वो जाने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि कहां जाना है, जाना के पास जाना है, परेशान होने की क्या जरूरत है। तो बंदे ने अर्ज किया, किस कदर पुरकैफ शीरी जिंदगी सुन्नत में है, किस कदर पुरकैफ शीरी जिंदगी सुन्नत में है, ऐसा लगता है कि जैसे आदमी जन्नत में है, ऐसा लगता है कि जैसे आदमी जन्नत में। पाबंदी करके देखें, दुआएं याद हैं बहुत, खाने के बाद की, बाथरूम जाने की, पढ़ते नहीं है मौके पर। अभी मैं असर में अर्ज कर रहा था, अब देखिए आदमी खा ले, ज्यादा ज्यादा खा ले, खा लिया, एक तो खाना अक्सर लोग किसके लिए परेशान है, रिस्क के लिए। इसका दूसरा शेर भी सुन लीजिए ताकि मेरी यहां रह ना जाए, किस कदर पुरकैफ और शीरी जिंदगी सुन्नत में है, ऐसा लगता है कि जैसे आदमी जन्नत में है, फिर हुसूले जर की खातिर क्यों मैं सरगर्दा फिरूं, वो मुझे मिलकर रहेगा जो मेरी किस्मत में है, वो मुझे मिलकर रहेगा जो मेरी किस्मत, कोई नहीं छीन सकता जो मेरी किस्मत में है। तो खाना खाने के लिए सारी दौड़ है ना, अच्छा अच्छा खाना खाए आदमी, अच्छा ठाट बाट हो, हजरत फरमाते ठाट बाट हाट पाट आखिर में खाट, ये सारे ठाट बाट और हाट पाट खत्म होने वाले हैं, सबको खाट में लेटना है। उधर रखा रहता है ना मस्जिदों में, इमाम साहब कहने ये जरा यहां से हटा दीजिए, मुझे देख के डर लगता है। क्यों डर लगता है भाई, सबको लेटना है इसमें, बल्कि लेटने वाला खुशकिस्मत है, वरना खुदा ना खास्ता कोई डूब के मर गया कोई फजाई हादसे में, उसकी छड़ियां बोटियां नहीं मिलती, डूब के मरने वाला बेचारा, तो उसको जनाजा मिल गया, मुसलमान कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं, अकबरा, फिर हमने उसको कब्र में दाखिल किया, फिर हम उसको उठाएंगे, फिर हम उसको उठाएंगे। कल्ला लम्मा यकदिमा हमारा फल यनज़ुर इंसानु इला क़ौमी, अल्लाह ताला कैसी शान है। मतलब तो खाने के लिए सारी दौड़ है, अच्छा खा लिया, अब वो हजम ना हो, फिर एक तो खाना मिलना मुश्किल है, खाना मिल गया अब वो हजम ना हो तो कितना मुश्किल, पेट में रुक जाए, कब्ज हो जाए खुदा ना खास्त, कितना मुश्किल है। इससे बवासीर का मर्ज होता है, पाइल्स का मर्ज, इनको कब्ज रहता है, उनको पाइल्स का मर्ज हो जाता है बवासीर का, अल्लाहुम्मा हफ़्ज़ नाम है, इतना खतरनाक मर्ज है, या लोग से शर्मिंदा भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, किसी को बताना भी दुश्वार, और अक्सर बेचारों का इलाज भी बड़ी मुश्किल से होता है। तो कितना कितनी बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला की कि खाया हजम भी हो गया, इसीलिए ये दुआ सिखाई, खाया और हजम भी हो गया। डायमंड टेक्सटाइल में मैं था, हमारा जो कैशियर था वो एक दिन नहीं आया, तो दूसरे मैंने पूछा क्या कहाँ थे, कहने कल मेरे भाई अस्पताल में एडमिट था, उसको बवासीर का मर्ज है, तो वो उसके जो फुजला था वो अटका हुआ था, उसको ऑपरेशन करके निकाला गया। बताइए कैसी कैसी बीमारियां हैं, ऐसा था कि उसके, क्योंकि फिर आंतों में जान नहीं रहती, अपनी मर्जी से नहीं चल सकता हूं, फिर वो आर्टिफिशियल तरीके से ऑपरेशन करके निकाल, शर्म हया अलग और तकलीफ अलग, कितना शुक्र अदा करने का मकाम, यही तो शुक्र अदा किया जा रहा है। दाखिल होते अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, अपना फायदा है कि गंदे शयातीन नहीं देख सकते, सबको अंधा कर देते हैं अल्लाह ताला, ठीक है। बाहर निकले अब आराम से फारिग हो गया आदमी, उनसे पूछिए जो सिगरेट पीते रहते हैं, कब्ज टूटता है बड़ी मुश्किल, जो आराम से फारिग हो गया वो शुक्र अदा करे, बाहर निकले पहले सीधा पैर रखे, बाहर बाथरूम से बाहर जाते हुए उल्टा पैर रखे, करेंगे ना, खाली बस सुनते रहते हैं सर हिलाते रहते हैं, बकरी भी सर हिलाती रहती है, तो वो शायर सुना रहा था उसको अपना कलाम, वो सर वो जुगाली करो, दाद दे रहे, तो ये दाद नहीं चाहिए, करने वाले लोग चाहिए। बायां पैर पहले अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस पढ़ के बायां पैर रखे, आका की सुन्नत जिंदा होगी, अल्लाह ताला का प्यार मिलेगा। अल्लाह ताला मन अहब सुन्नती फकत अहब बनी, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। खाली जिक्र कर लिया इतनी जोर से पूरा मोहल्ला जाग रहा है, लोग इतने बैठे हैं, जाग पूरा मोहल्ला रहा है 12 बजे, बताइए ये सही हो सकता है, ईज़ाए मुस्लिम हराम नहीं है,
ईज़ाए मुस्लिम है ये कि दूसरों को जबरदस्ती आप जगा रहे हैं। असल क्या है, सुन्नतों की इत्तिबा, इसका मुदाकरा नहीं होता ऐसी जगह। सिर्फ आपकी विलादत शरीफा बयान की जाती है या सीरत तैयबा। सीरत तैयबा में यह भी तो है कि आपने आपने लोहे की खोद पहनी और आपके जमीनों में लोहे की खोद घुस गई, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, कोई बयान नहीं करता। आपने फरमाया वदीत तो कल मैंने जुम्मे में सदी शरीफ को बयान किया। वल्लजी नफ्सी बियदी, ये सीरत का हिस्सा नहीं है, इसको कोई बयान नहीं करता ऐसा मौलवी, उससे हलवा माडा नहीं मिलेगा उसको। वल्लजी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आका फरमा रहे हैं। बुखारी और मुस्लिम मुत्तफकुन अलैहि हदीस है, तिर्मिजी अबू दाऊद की नहीं। लवदित तू अन उक्तला फी सबीलिल्लाह, मेरा जी चाहता है, मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाऊं, शहीद किया जाऊं। लवदित तू अन उक्तला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उक्तल, आखिरी लफ्ज फिर उक्तल है, यानी शहादत ही मतलब। आप बताना चाह रहे कितना बड़ा इसका मकाम है, तो 26-27 मरतबा आप निकले, ये कोई बताने वाला नहीं है। बताइए, फलस्तीन के लिए दुआ करने वाले भी कम है, कम से कम हम दुआ तो करें। दवा करना मुश्किल है, और दवा के भी बताया किसी ने, आज ये दोस्त आए कि मुफ्ती तकी साहब के अकाउंट में जो है पैसे, अब इतने बकाबिले एतमाद लोग हैं तो जितना जहां तक हो सके अकाउंट में भेजना तो आजकल बहुत आसान है। आप किसी को भी, आपके पास नहीं अकाउंट, आप किसी को 1000 दें, अपने अकाउंट से भेज दो, वो ले लेगा और वहां भेज देगा, वहां पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। ये इन हजरात के ताल्लुकात हैं, उन्हें हजरात की अमानतदारी पे कसम खाई जा सकती है। बस तो जो चाहे हिस्सा ले सकता है माली एतबार से भी, और दुआ तो हर आदमी अपनी मस्तूरात से करें कि लोगों के दुआ करो। तुम लोगों को देखो कि कैसे बच्चे वहां शहीद हो रहे हैं, मीडिया ना देखें लेकिन अखबार तो देखें कम से कम, कि बच्चे शहीद हो रहे हैं, किस तरह बमबारी कर रहा है। इराक में जिसको खत्म करने आया था उसका चेला वहां पे वही बम बरसा रहा है, कीमियाई हथियार, उसको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये इंसानियत के दुश्मन है और इस्लाम के दुश्मन है। हर जगह अमन का परिंदा लेके पहुंच जाते हैं, ये अमन का परिंदा है, दहशत गर्द। अल्लाह ताला मुसलमानों के हाल पे रहम फरमाए, और ये चंद बेसरो सामा सरफरोश उन्होंने हिम्मत की है, उम्मत मुस्लिमा को चाहिए उनकी मदद करें। आप क्या समझते हैं शेखुल इस्लाम के पास इतना वक्त है जो ये ऐसे बातें फरमा रहे हो? कल जुमे में उनका मैसेज आया, तब मैंने जुमे में ये बयान किया कि खुतबा को चाहिए उनके लिए आवाज उठाएं, कि मुल्की एतबार से आलमी एतबार से लोगों को आवाज उठानी चाहिए उनके लिए, वो मजलूम है, वो उन पे कब्जा किया हुआ है सहयूनियों ने, इसराइलियों ने, यहूदियों ने, जिसको सलाउद्दीन अयूबी ने बाजियाब कराया था हमारी कमजोरी की वजह से, फिर उनके कब्जे में चला गया। तो अब देखिए, हम जब बाथरूम से बाहर निकले, ये बात दरमियान में आ गई, अच्छा हुआ कि भाई मेरा इरादा था बाकायदा, तो अल्लाह का शुक्र है इसके दूसरों तक भी पहुंचाएं कि वे जो चाहे इसमें हिस्सा ले अपने हस्ब मकदरत। कोई इसके लिए जरूरी नहीं बहुत करोड़पति हो, 1500 रुपए भी दे के आदमी शहीदों में खून निकलवा के शहीदों में नाम लिखा ले। तो अब जब हम अच्छी तरह आदमी फारिग हो गया, अक्सर बाथरूम में जाके फारिग हो जाता है, अब बाहर निकले सीधा पैर निकाला गुफरानक, निकलने के बाद अंदर ही से ना पढ़े, अंदर कुछ पढ़ना जायज नहीं है। गुफरानक, माफ कर दीजिए अल्लाह, हम आपसे माफी मांगते। क्यों, किस बात की माफी? गुनाह किया बाथरूम जाके, इस बात की माफी कि इतनी देर हम आपके जिक्र से गाफिल रहे, माफ कर दीजिए। गुफरानक, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नी अल-अज़ा हमारे कारी साहब मुंह पूरा खोलो अलिफ में, आ फानी और वाओ में गोल करो, आऊन में गोल करो वाओ, तो इससे मुंह ऐसे करने से लफ्ज सही निकलता है। तो आप ये क्या है, पहले तो माफी मांग ली कि अल्लाह हम गाफिल रहे, आप माफ कर दीजिए, और आपका शुक्र है कि आपने गंदगी को हमसे दूर कर दिया। अन्निल अज़ा, अज़ा जो हमें अजियत देता, गंदी चीज थी, अगर ये रुक जाता तो अजियत से बुरा हाल होता, नींद नहीं आती रात भर, ये आपने निकाल दिया, ये आपका शुक्र है। अब देखिए, हम आदत बना लें ऑटोमेटिक होता रहेगा, बाहर निकलेंगे दुआ याद आ जाएगी। तो जो खाने के बाद भी दुआ पढ़े और फरागत के बाद भी, सब चीजें सवाब बनती चली जाएंगे, सब चीजें सवाब बन, पूरी जिंदगी मुसलमान की, मुसलमान का कोई काम दुनिया नहीं है, यहाँ तक कि बीवी बच्चों से मोहब्बत भी दुनिया नहीं है, वो भी अल्लाह के लिए करता है। कि हजरत फरमाते थे ये वो लैला है जो बदस्ते मौला मिली है, इससे मोहब्बत करो, इससे मोहब्बत करना सवाब है, गैर महरम को देखना भी गुनाह है। ये वो लैला है जो बदस्ते मौला मिली, बच्चे अल्लाह आपने बच्चे अता फरमाए, उनसे मोहब्बत करना नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है, इसलिए हम मोहब्बत करते हैं। दीन बन गया, दीन बन गया। तो वो मैं सुना रहा था कि बाज़े लोग कहते हैं यहाँ तो बस कुछ नहीं है, स्कोप नहीं है, बाहर जाना चाहिए। मेरे हालात मुझसे कहते हैं चल कहीं दूर चल के रहते हैं, और मुझको कब्रों से डर नहीं लगता। ये सुनाना था, मुझको कब्रों से डर नहीं लगता, क्यों? मेरे बाबा वहीं पे रहते हैं, मैं तो जाता रहता हूँ, मुझको कब्रों से डर नहीं लगता, मेरे बाबा वहीं पे रहते हैं, मेरे बाबा हर सब हमारे बाप दादा वहीं पर है, फिर भी हम डरते, क्यों डरते? अमाल खराब है, अमाल सही हो जाएंगे इंशाल्लाह, कल नहीं आज चलने के लिए तैयार, तैयारी अगर रहे तो कोई परेशान नहीं होगा इंशाल्लाह। बल्कि मुफ्ती रशीद अहमद साहब को मैंने देखा, बस यहाँ तो फरमाते थे इंतजार है कि कब अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, कब अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, अल्लाह वाले बेचैन। इसलिए मुसलमान की रूह जल्दी निकलती है और काफिर की रूह देर से निकलती है। वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता, पढ़े पता चले, अल्लाह ताला कसम खा रहे उन फरिश्तों की कसम जो गर्क होके रूह को खींच के लाते हैं, खींच के लाते निकल। इसकी मिसाल ऐसी है, ये लिखी है तफसीरों के ज़ेल में कि परिंदा है या कोई भी जानवर आपको निकालना चाह रहे हैं, नहीं निकल रहा है, और पकड़ रहा है, और वो और आप ताकत लगाएंगे, और जो खुद आप खोल दें तो जो परिंदा सही है वो खुद निकलना चाहता है, परिंदा तो आजाद रहना चाहता है ना, वो परिंदा नहीं है, दरिंदा है जो छुपना चाह रहा है, वो काफिर है, रूह छुपती है उसकी कि मैं अगर निकल गई तो मुझे तो जहन्नम में जाना ही, उसकी रूह छुपती है, इसलिए उसको खींच के निकाला जाता है। वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा, मुसलमान की रूह बहुत आसानी से वस्साबिकाति सबहा, तो जो अल्लाह वालों की रूह इसलिए आसानी से क्यों निकलती, क्योंकि उनको वो तो जाने के लिए पहले ही तैयार रहते हैं, रूह निकल जाती, और जो जाने के लिए तैयार नहीं होता उसको ज्यादा मुशक्कत होती, तो ये मौत की तकलीफ भी जो है वो आसान हो जाएगी अगर हम जाने के लिए तैयार हो जाएं थोड़े दिनों के लिए, सोच लें डिपार्चर होने वाला है, थोड़ा सा मुराकबा कर लें, डिपार्चर होने वाला है, हम सबको जाना है, सबका आखिरी आरामगाह क्या है, कब्र जो है वो वेटिंग रूम है, आखिरी आरामगाह नहीं है, आखिरी आरामगाह जन्नत है, लोग लिखते हैं आखिरी आरामगाह, लेकिन ये आखिरी आरामगाह नहीं है, इससे आगे भी मंजिल है, ये तो वेटिंग रूम है, ये वेटिंग रूम है, आखिरी आरामगाह जो है वो इंशाल्लाह जन्नत में है, और जिसका वेटिंग रूम जिसकी मंजिल अच्छी होगी, फिर मैं कहता हूं पहले भी शायद मैं सुना चुका हूं लेकिन मजेदार बात है, हवाई जहाज का वेटिंग रूम कैसा होता है, शानदार, एसी चल रहा है, और चिंची का वेटिंग रूम कैसा होता है, धूप में खड़े हैं, धूप में खड़े खड़े इंतजार करो, और थोड़ा दरमियान में भी है, डेबू वालों का होगा थोड़ा सा छप्पर होगा ऐसा होगा, लेकिन और फिर फर्स्ट क्लास में जो आप बिजनेस क्लास में जा रहा है उसका तो ऐसा होता है, खाने इतने रखे होंगे, खाने मेवा जात जो चाहे खाए आदमी, इतना देख के खाया नहीं जाता आदमी, जो चाहे खाए इतना रखा होता है वहां, नहीं खाते लोग वहां भी, क्योंकि वो डबल किराया देते हैं ना, तो वहां भी हर वक्त हर थोड़ी देर पूछते हैं ये ले आए वो ले आए, और रखा हुआ बहुत सी चीजें रखी हैं, फल फ्रूट सब रखे हैं, एक आदमी कितना खाएगा, ये तो सिर्फ नफ्सियाती मार है डबल किराया लेने के लिए, खाता वाता इतना नहीं आदमी, बस वो जरा खुली जगह होती है, पहले उनको लाया जाता है, पहले उनको उतारा जाता है, इस इज्जत के डबल पैसे होते हैं, जगह भी जरा खुली होती है, कंफर्टेबल कंफर्टेबल। तो अगर हमारी इंशाल्लाह मंजिल जन्नत है तो वेटिंग रूम भी बेहतरीन है, फरमाएंगे जन्नत का लिबास पहना दो इसको, और फिर कहेंगे खिड़की खोल दो, और जन्नत का नजारा करता हुआ सो जाएगा, नम का नौमुल उरूस, सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन थकी हुई सोती है और थोड़ी देर में सुबह हो जाती है, फिर सुबह होगी कयामत का मंजर और कामयाबी ही कामयाबी इंशाल्लाह। اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اللہم جعلنا منہم, اور دوسرے گروہ سے بچائے. وجوہ یومئذ مسفرہ, اس دن کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوں گے جو چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے, چمکتے ہوئے چہرے, خوشی ان کے چہرے سے چھلک رہی ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ واحقت مستبشرہ, ہنستے کھیلتے ظاہقہ ہنسنے والے, مستبشرہ بشارت یافتہ, مستبشرہ. وجوہ یومئذ علیہا غبارہ, اور مجرم لوگوں کے چہرے, اکثر کافر اور جو بالکل ہی کافروں کے راستے پہ ڈھینٹ قسم کے ہیں, ان کی حالت کیا ہوگی؟ ان کے چہروں پر گرد اڑ رہی ہوگی, ہوائیاں اڑ رہی ہوں خوف کی وجہ سے. جیسے پھانسی کے مجرم کا کیا حال ہوتا ہے, پھانسی کے مجرم ہوائیاں اڑ رہی ہوں. ترحقها قطرا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, میں نے اسی لیے اس کی کافر کے ساتھ وہ فاجر بھی جو کہ گناہ کو بھی حلال سمجھ, ارے یار یہ سب کیا ہے بس. ایسے بہت سے ایسے ہیں, ان کو شکوک و شبہات بھی ہے کہ یہ سب کہتے ہیں مولوی پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے, شک والا تو ایمان ہے ہی نہیں, لا ریب فی والا ایمان. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, شاعر کہتا ہے اللہ والا جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ. مر کے دیکھنے کے سے فائدہ کیا ہوگا, پہلے اگر ایمان لے آئے پھر فائدہ. لو بھائی سنا دو پھر دعا کریں گے, طبیعت میری کچھ مزمحل ہے, سب ساتھیوں سے دعا کی درخواست.
حضرت والا دعوت برکات و مالیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. اثر جو شافی محشر کے گن گایا نہیں کرتے, اثر جو شافی محشر کے گن گایا نہیں کرتے, شفاعت وہ کبھی خوابوں میں بھی پایا نہیں کرتے, اثر جو شافی محشر کے گن گایا نہیں کرتے, شفاعت وہ کبھی خوابوں میں بھی پایا نہیں کرتے. اگر ہے عشق صادق آپ کا تو کام لازم ہے, اگر ہے عشق صادق آپ کا تو کام لازم ہے, فقط یوں نام کے عشاق کہلایا نہیں کرتے, فقط یوں نام کے عشاق کہلایا نہیں کرتے, فراق مصطفیٰ میں دل بھی اپنا خون روتا ہے, فراق مصطفیٰ میں دل بھی اپنا خون روتا ہے, فقط ہم آنکھ ہی سے عشق برسایا نہیں کرتے, فقط ہم آنکھ ہی سے عشق برسایا نہیں کرتے, فراق مصطفیٰ میں دل بھی اپنا خون روتا ہے, فراق مصطفیٰ میں دل بھی اپنا خون روتا ہے, فقط ہم آنکھ ہی سے عشق برسایا نہیں کرتے, فقط ہم آنکھ ہی سے عشق برسایا نہیں کرتے. یہ شعر حضرت کا بہت عمدہ شعر ہے. اسے جانے دو طیبہ تم نہ اس کا راستہ روکو, اسے جانے دو طیبہ تم نہ اس کا راستہ روکو, یہ دیوانہ ہے دیوانوں کو سمجھایا نہیں کرتے, یہ دیوانہ ہے دیوانوں کو سمجھایا نہیں کرتے, اسے جانے دو طیبہ تم نہ اس کا راستہ روکو, اسے جانے دو طیبہ تم نہ اس کا راستہ روکو, یہ دیوانہ ہے دیوانوں کو سمجھایا نہیں کرتے, یہ دیوانہ ہے دیوانوں کو سمجھایا نہیں کرتے. میرے آقا کا در لوگو بہاروں کا خزینہ ہے, میرے آقا کا در لوگو بہاروں کا خزینہ ہے, وہاں ذوق طلب کے پھول مرجایا نہیں کرتے, وہاں ذوق طلب کے پھول مرجایا نہیں کرتے, نگاہوں میں بسا ہے جب سے نقشہ سبز گنبد کا, نگاہوں میں بسا ہے جب سے نقشہ سبز گنبد کا, تو دوجے کوئی بھی منظر ہمیں بھایا نہیں کرتے, تو دوجے کوئی بھی منظر ہمیں بھایا نہیں کرتے, اثر ہے نعت جیسی بھی سنا دے اپنے آقا کو, اثر ہے نعت جیسی بھی سنا دے اپنے آقا کو, کہ وہ جذبات کی توہین فرمایا نہیں کرتے, کہ وہ جذبات کی توہین فرمایا نہیں کرتے, اسے جانے دو طیبہ تم نہ اس کا راستہ روکو, اسے جانے دو طیبہ تم نہ اس کا راستہ روکو, یہ دیوانہ ہے دیوانوں کو سمجھایا نہیں کرتے, یہ دیوانہ ہے دیوانوں کو سمجھایا نہیں کرتے, اثر جو شافعِ محشر کے گنگایا نہیں کرتے, شفاعت وہ کبھی خوابوں میں بھی پایا نہیں کرتے.
ابھی تک ہم سوات نہیں گئے اور شوق بھی نہیں ہے جانے کا. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ اپنے دربار کی, اپنے محبوب کے دربار کی حاضری نصیب فرمائی, لیکن پھر بھی ہر وقت تڑپ رہتی ہے. ابھی ہمارے حضرت والا حاضر ہوئے تو بہت تڑپ تھی, نہیں جا سکے. پھر آگے پروگرام بنا رہے ہیں، اسکیم بنا رہے ہیں، اللہ کرے کامیاب فرمائے۔ شیئر بھی میں نے عرض کیا تھا حضرت والا جب جا رہے 2003 میں، کہ ظاہر طیبہ کو یوں حسرت سے تکتا رہ گیا، چل دیے وہ مسکرا کر میں سسکتا رہ گیا، چل دیے وہ مسکرا کر میں سسکتا رہ گیا، چل دیے وہ مسکرا کر میں سسکتا رہ گیا، وہ کہ جیتے جی رسائی پا گئے منزل تلک، اور میں راہ تخیل میں بھٹکتا رہ گیا، اور میں راہ تخیل میں بھٹکتا رہ گیا، اور اوپر اوپر حوصلوں کی برف رکھی تھی مگر اندر اندر لاوائے مہجوری پکتا رہ گیا۔ اوپر سے تو آدمی خاموش رہتا ہے لیکن اندر پوچھو، اندر اندر لاوائے مہجوری پکتا رہ گیا، اور یہ وفور شوق کی تقصیر ہے میری نہیں، جانے میں کیا کیا جنوں میں آج بکتا رہ گیا، میری قسمت خراب ہے میں ایسا ہوں ویسا ہوں، جانے میں کیا کیا جنوں میں آج بکتا رہ گیا، اور باوجود کوشش ضبط غم ہجراں اثر، باوجود کوشش ضبط غم ہجراں اثر، آپ کی آنکھوں کا پیمانہ چھلکتا رہ گیا، آپ کی آنکھوں کا پیمانہ چھلکتا رہ گیا۔ جب میں حاضر نہیں ہوا تھا تو جمیل عظیم آبادی رحم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اناتیہ مشاعرہ ہر مہینے کو ہوتا تھا، تو وہاں ایک زمین ملی تھی، آپ ہیں چشم و چراغ کائنات، زمین سے مراد مصرا، لگ گئے اچھا زمین مل گئی مفت میں، مصرا مراد، آپ ہیں چشم و چراغ کائنات، بہت سنے اس پہ شعر کہے تھے، میں نے بھی کہا تھا، بہت پسند کیا لوگوں نے، بالکل میں نوجوان 22 سال 20 سال کی عمر تھی، شادی کے بعد سے پھر میں نے جانا ہی چھوڑ دیا، اتنی فرصت نہیں تھی، حضرت کے پاس جاتا کہاں کہاں جاتا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر طیبہ سے مچل جاتا ہے دل، ذکر طیبہ سے مچل جاتا ہے دل، بے بسی کے ہاتھوں کھا جاتا ہوں مات، ذکر طیبہ سے مچل جاتا ہے دل، بے بسی کے ہاتھوں کھا جاتا ہوں مات، اور سبز گنبد کے مقابل ہیچ ہیں، سبز گنبد کے مقابل ہیچ ہیں، وادی کشمیر و کاغان و سوات، سبز گنبد کے مقابل ہیچ ہیں، وادی کشمیر و کاغان و سوات، واللہ دل بھی نہیں چاہتا، جائیں تو کسی دین کے کام کے لیے جائیں، ثانوی درجے میں دیکھ بھی لیں گے، لوگ کتنا کتنا گھومنے 2-2 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، میرا کبھی دل نہیں چاہتا، جاتا ہے تو یہ کہ دین کا کام ہو، ثانوی درجے میں چلو بھی کوئی دریا بھی دیکھ لیں، پہاڑ بھی دیکھ لیں، وہ سینری گرینری وہ سب دیکھ لیں، لیکن جی چاہتا ہے بس آدمی سال میں 2 سفر تو ہو کم از کم روزہ اتھر کا، اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ جب میں نہیں گیا تھا ایک شعر اور میں نے کہا تھا، اب یہ مقصد ہے میرے جینے کا، جب حاضری نہیں ہوئی تھی، اب یہ مقصد ہے میرے جینے کا، میں مسافر بنوں مدینے کا، وہ میں نے لکھ کے اپنے گھر میں لگایا ہوا تھا، پھر جب مقصد حاصل ہو گیا جینے کا اور کئی حاضریاں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دی، پھر انسان کی حوث بڑھتی ہے نا، میں نے شعر میں ترمیم کی 3-4 سال پہلے جو حاضری ہوئی تھی، ایک خواہش ہے میرے سینے میں، قافیہ وہی ہے، ایک خواہش ہے میرے سینے میں، میرا مدفن بنے مدینے میں، اب حاضری تو ہونے لگی ہے، مدفن بھی یا اللہ بنا دیجیے آپ کے لیے، کیا مشکل۔ ایک بات میں نے وہاں کل کے بیان میں کئی ان لوگوں سے معذرت کہانا انداز میں، میرے تلخ لہجے کا آپ برا نہ مانیے گا، یہ خیر خواہی کے اندر ہے، خیر خواہی اس کے اندر چھپی ہے، جیسے بڑے میاں بیٹھے رہتے ہیں، بڑے میاں کا کیونکہ ان کو سب عزت کرتے ہیں، ان کی بول چال بھی ایسی، اوے دیکھتا نہیں ہے کسی کا سامان لے کے جا رہا ہے، اس میں سے چینی گر رہی ہے، آٹا گر رہا ہے، کتنا مہنگا ہے، او دیکھتا نہیں، اندھے کہیں کہ دیکھ گر رہا ہے سارا، تو کیا کہے گا، انکل آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں، ایسا کہے گا، بلکہ کہے گا جزاک اللہ، تھینک یو، فوراً اس کو اپنا خیرخواہ سمجھے گا، حالانکہ وہ بات تمیز سے نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ خیرخواہی سے توجہ دلا رہا ہے، تو میں میری بات بھی تمیز سے باہر ہے، قمیض کے اندر ہے، تمیز سے باہر ہے۔ تو لیکن اس میں خیرخواہی تو ہے نا، کہ سخت لہجے میں کیا ہے کہ ہم، وہ تو بے خبری میں نقصان پہنچا رہا ہے، ہم نے تو خبر بھی ہے کہ ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، افسوس یہ، خبر بھی ہے کہ فجر کی نماز کتنی ضروری ہے، پانچ ٹخنے سے اوپر رکھنا کتنا ضروری ہے، داڑھی بڑھانا، کہ سب خبر ہے، ہاں ہاں کر رہے ہیں، ہاں بات صحیح ہے مولانا، مگر بس مگر تو ہوگا، مگر مچھ بن گئے مگر سے، اگر کی شادی ہوئی مگر سے
اولاد پیدا ہوئی، کاش یہی ہونا تھا. اللہ تعالی ہمیں دین کے معاملے میں چاقو چوبند فرما دے. مانگے اللہ تعالی سے. دیکھیے ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم ان بھائیوں کی مدد کرتے، ابھی تو ہماری نماز اور سنتوں کی اتباع کے مسائل ہیں، وہاں کیسے جائے گا؟ ہم تو وہ ماحول بنانا چاہ رہے ہیں کہ سارے مسلمان ایسے بیدار ہوں، ایک آواز لگے اور سب تیار ہو جائیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دینے پہ کہہ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کسی نے سامان دیا تھا، میں نے آپ کو دیا یا آپ نے مجھے دیا، دو سال پانچ سال بیس سال بعد واپس کر دیا، احسان کیا ہم نے بھی اگر جان دے دی تو احسان کیا کیا بھائی؟ اس نے لے لی اپنے راستے میں، اس نے احسان کیا ہے کہ اپنے راستے میں جان قبول کر لی، ورنہ لوگ کیسی کیسی موت مرتے ہیں. تو تمنا تو کرنی چاہیے، روایت میں یہ بھی ہے، جس نے اللہ کے راستے میں کوئی زخم نہ کھایا، اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور جس کو یہ تمنا بھی نہ ہوئی، وہ مرے گا تو نفاق کے شعبے میں مرے گا، اس کو کوئی حل کر. مانگے تو صحیح، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی اللہ تعالیٰ جانے کہ اللہ وہاں جب آتا ہے، آدمی جاتا ہے سفر میں، سفر میں جانے والا اللہ کے راستے میں جانے والا ہوتا ہے، شہید ہوگا انشاءاللہ انتقال ہوا، اور جب جب میرا وقت ہے، یہ نہیں کہ اسی دفعہ مجھے مار دیجئے. موت جلدی مانگنا بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، موت جلدی مانگنا اچھا نہیں ہے، زندگی مانگے لیکن برائے بندگی مانگے. یا اللہ جب میرا وقت پورا ہو آپ مجھے یہاں بلا لیجئے، مولانا مشرف علی صاحب تھانوی کی طرح، یہ جب وہاں گئے وہاں انتقال ہو گیا، مدینہ شریف میں انتقال ہوا، مفتی تقی صاحب نے غسل دیا اور جنت البقیع میں مدفون. اللہ تعالی ہمیں حاضری بھی نصیب فرمائے اور وہاں کی تدفین بھی نصیب فرمائے. اے بھائی وہ اعلان کر دو کل کا. سلام علیکم.